मंगलमय मंगलकरणी वीतराग विज्ञान नमोताहि जाति भजे अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल गए सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने।
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज हम सभी लोगों ने पिछले 10-15 दिनों में निरंतर एक विचार की प्रक्रिया को शुरू किया था और हमारा प्रयत्न कहाँ तक सफल हुआ है ये हमें अपने जीवन में खुद झांक करके देखना पड़ेगा। निरंतर विचार की प्रक्रिया हमारे जीवन को भावनात्मक रूप से परिवर्तित कर पाई है या नहीं कर पाई है। हमारे खोटे विचारों की जितनी दृढ़ता है और जितनी आसानी से हम उन खोटे विचारों के अनुसार अपने जीवन को पतित बना लेते हैं, ऐसा ही क्या हमने पिछले दिनों अपने श्रेष्ठ विचारों को अपने भीतर सुदृढ़ किया है या नहीं कर पाए। भावनात्मक विकास या भावनात्मक परिवर्तन और श्रेष्ठ विचारों में दृढ़ता लाना ये हमारा प्रयत्न इस प्रक्रिया के दौरान रहा। और दूसरी चीज़, हमारे मन वचन काय की जो व्यग्रता है, जो आज वर्तमान में हमारे भीतर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या कि हमारे भीतर जो एक तनाव की स्थिति है, वो भी यदि हम इस प्रक्रिया के द्वारा चाहते तो कम कर सकते थे। अभी भी वक्त है, हम चाहें तो विचारों की या मन वचन काय की व्यग्रता को कम करके, उसकी चंचलता को कम करके हम स्थिरता भी पा सकते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और जो तनाव हमारे मन में है, स्ट्रेस या स्ट्रेन, वो भी कम होता है। ये अनुप्रेक्षा या कि बार बार चिंतन की प्रक्रिया इतना ही नहीं, हमारे बहुत सारे भ्रम को भी तोड़ती है और हमें वास्तविकता से परिचय कराती है। भ्रम टूटने पर राग द्वेष घटता है, हमारा मोह भी कम होता है, हमारे भीतर जो ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ये इतनी बातें हमने पिछले दिनों इस प्रक्रिया के दौरान सीखने और समझने की कोशिश की है। जीवन में जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब क्षणभंगुर है, जो दिखाई नहीं देता है वो शाश्वत है, जो दिखाई नहीं देता वो मेरा अपना आत्मतत्व है, और जो कुछ भी यहाँ इन आँखों से दिखाई देता है वो सब क्षणभंगुर है। मेरा अपना शरीर भी नाशवान है, और इतना ही नहीं, मैं जिन जिन चीज़ों का आलंबन लेता हूँ वे चीज़ें हमें वास्तव में सहारा नहीं दे पाती। ऐसी स्थिति में हमें धर्म और पंच परमेष्ठी का सहारा लेना चाहिए। संसार में हम जितना सुख खोजने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें दुख मिलता है। हमें एक ऐसे सुख की खोज करना चाहिए जिसके पीछे दुख नहीं है। यहाँ हम सोचते हैं कि कोई और हमें सुखी और दुखी बनाता है, लेकिन हमने पिछले दिनों इस विचार प्रक्रिया से ये बात अपने भीतर बहुत दृढ़ता से तय कर ली है कि नहीं, सुखी दुखी कोई मुझे नहीं बनाता, मैं स्वयं अपना मित्र हूँ, मैं ही स्वयं अपना शत्रु हूँ। मैं यदि अपने जीवन को पतित बनाता हूँ तो मैं ही अपना शत्रु हूँ, मैं अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाता हूँ तो मैं ही अपना मित्र हूँ। और सुख और दुख मैं अपने उत्थान और पतन के जो परिणाम हैं उनके द्वारा ही पाता हूँ। यहाँ जो शरीर मेरे साथ इतना एकमेक हो गया है वो भी मेरे से पृथक है, तब और जो चीज़ें हैं वो तो पृथक हैं ही। इतना ही नहीं, ये शरीर जिसे मैं रोज नहलाता धुलाता हूँ, साफ सुथरा बनाने के अनेकों प्रयत्न करता हूँ, इसके बावजूद भी मुझे मालूम पड़ गया है कि इसका स्वभाव निर्मलता नहीं है। आत्मा का स्वभाव अवश्य निर्मलता है, शरीर तो मलिन है और मलिन ही रहेगा। इसलिए मुझे इसकी मलिनता दूर करने का प्रयत्न नहीं करना है, बल्कि इसके माध्यम से चेतना की मलिनता दूर करके अपनी उस निर्मल स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना है। मैं निरंतर जो भी मन वचन काय से कार्य करता हूँ, जो मेरे मन वचन काय की व्यग्रता है वो मेरे संसार को निरंतर बढ़ाती है। मैं चाहूँ तो अपने मन वचन काय को एकाग्र करके इस संसार के बढ़ाने वाले कर्मों को आने से रोक सकता हूँ, और इतना ही नहीं, मैं अपने मन वचन काय को स्थिर करके अपने परिणामों को भला बना करके, अपने परिणामों को अच्छा बना करके, जो अज्ञानतावश मैंने खोटे कर्म अपने साथ संचित कर लिए हैं उनको भी हटा सकता हूँ। इस पूरे लोक में मैं सबका कर्ता बनने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मैं ही अपने परिवार, समाज, देश, यहाँ तक कि पूरे विश्व को मैं ही चलाता हूँ। ऐसा ये मेरा मिथ्या भ्रम, ये अहम बुद्धि, संसार से सुख की आकांक्षा, और इतना ही नहीं, सुख नहीं मिलने पर दूसरों से शिकायत, ये सारी चीज़ें मुझे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इस संसार या इस लोक में कोई इसको न बनाने वाला है, न इसे कोई नष्ट करता है, न कोई इसे धारण करता है। और आगे बढ़ करके हमने समझा, विचार किया कि ये मनुष्य जीवन सुनते तो हैं कि बहुत दुर्लभ है, लेकिन ह्यूमन विदाउट ह्यूमिनिटी इज नॉट रेयर, ह्यूमन विद ह्यूमिनिटी इज वेरी रेयर। मनुष्य मनुष्यता के बिना यदि मैं मनुष्य जीवन प्राप्त भी कर लूँ तो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। ये मनुष्य पर्याय इसलिए दुर्लभ है जबकि मैं उस दुर्लभता को सार्थक करूं, बोधि की प्राप्ति करूं, तब वो मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। जिस मनुष्य के जीवन में बोधि की प्राप्ति हो गई उसने अपने जीवन की दुर्लभता को वास्तव में सार्थक बना दिया, उसने अपने मनुष्य जीवन को प्राप्त करके उसे सार्थक बना दिया। हम सब अपने किसी पूर्व पुण्य के संचय से इस मनुष्य भाव को तो प्राप्त कर लेते हैं जो कि दुर्लभ है, लेकिन इस मनुष्य भाव में जो वास्तव में दुर्लभ है वो बोधि है, वो रत्नत्र है। बोधि के मायने सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, यही बोधि है, और जिससे हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसी ये बोधि दुर्लभ है, ऐसा वो मनुष्य भाव भी दुर्लभ है जिसमें बोधि की प्राप्ति हो जाए, ऐसा वो मनुष्य होना दुर्लभ है जिसमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। आज हम मनुष्य अवश्य हैं लेकिन हमें रत्नत्र की प्राप्ति तो हो सकती, पर रत्नत्र के फलस्वरूप जो केवल ज्ञान है उसकी प्राप्ति आज हमें यहाँ से नहीं हो सकती, पर फिर भी हमने अगर मनुष्य पर्याय पाई है तो उसकी सार्थकता इसमें है कि कम से कम हम रत्नत्रय की सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को पाने की भावना तो पाएं। और इतनी बात समझने के बाद आज आखिरी बात है, 12 अनुप्रेक्षाएं या 12 प्रकार से अपने स्वभाव को प्राप्त करने का चिंतन हमने किया, अपने मोह को कम करने का चिंतन किया, अपने वे ऑफ लिविंग को ठीक ठीक ढंग से जीने की प्रक्रिया को हमने सीखा। आज आखिरी में हम देखते हैं कि वो जो बोधि दुर्लभ है उसकी महिमा क्या है और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है। धर्म भावना और बोधि दुर्लभ भावना, इन दोनों में जरा सा अंतर है, ज्यादा नहीं है। जो बोधि है, जो रत्नत्रय है, वही धर्म है। लेकिन हमने वहां पर बोधि की दुर्लभता बनाकर बता करके उस बोधि को प्राप्त करने का उत्साह जागृत किया था। आचार्य भगवंतों ने हम पर कृपा करके पहले बोधि की दुर्लभता, और वो बोधि मनुष्य भव में प्राप्त होती है इसलिए उस मनुष्य भव की दुर्लभता, इसका हमें एहसास कराया। और जैसे ही हमें बोधि की दुर्लभता का और अपने मनुष्य जीवन की दुर्लभता का एहसास हुआ, तब फिर हम क्या करें, उस बोधि की प्राप्ति या उस धर्म की प्राप्ति के लिए क्या उपाय है और उस धर्म की महिमा क्या है। ये दोनों बातें हमें आज विचार करने की हैं। बत्थु स्वभावो धम्मो खमादि भावो यदश विहो धम्मो रैनत्ययम च धम्मो जीवाणम रखणो धम्मो। ऐसी आचार्य भगवंतों ने हमें धर्म के बारे में शिक्षा दी है। वास्तव में धर्म वो है जो कि धारण किया जाए और जिसके धारण करने से हमें मोक्ष रूपी उत्तम सुख की प्राप्ति हो, हमारा जीवन ऊंचाइयों को छू सके, हमारा जीवन निर्मल हो सके। वास्तव में धर्म वही है। अगर सरल शब्दों में हम समझना चाहें तो जो जितना हमारे जीवन को निर्मल करता जाए वही धर्म है, और जितना जितना हमारे भीतर वो निराकुलता देता जाए वही धर्म है। आचार्य भगवंत की यही दो लाइनें मेरे जीवन में जब तक गूंजती हैं। जब मैं आचार्य महाराज के पहली बार प्रवचन सुनने गया था, तब उनकी प्रवचन सभा में चतुर्दशी के दिन, वो याद है मुझे, चौदस का दिन था, तब आचार्य श्री ने प्रवचन के दौरान कहा था कि जितनी जितनी निराकुलता जीवन में आज है उतना उतना मोक्ष आज भी संभव है। कौन कहता है कि वर्तमान में मोक्ष नहीं है? ठीक है, पूर्णतः मोक्ष नहीं है, लेकिन जितनी जितनी निराकुलता का उपाय हम करते जाएंगे उतने उतने मुक्ति की तरफ आज भी हम बढ़ सकते हैं। ये बात हमें आज बहुत गौर से अपने भीतर विचार करने की है। हम लोग अपने आकुलता के कितने उपाय करते हैं दिन भर में, कितना हमारे जीवन का अनुभव है कि हमने जितनी भी बार संसार की चीजों से राग द्वेष किया है उतनी हमारी आकुलता और व्यग्रता बढ़ी है। हम सब समझते हैं कि इस आकुलता और व्यग्रता से बचने का उपाय क्या है, लेकिन हम इससे बचने का उपाय कम करते हैं, बल्कि इसी आकुलता और विकलता के उपाय हम अपने चारों तरफ निरंतर इजाद करते चले जाते हैं नए नए तरीके से। कहते जरूर हैं कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम उपाय दिन भर में अशांति के ही करते हैं। किसी भी तरह से देख लें, शांति का नाम धर्म कह लें, निर्मलता का नाम धर्म कह लें, निराकुलता का नाम धर्म कह लें, बात एक ही है। चाहे हम ये कहें कि हम शांति पाना चाहते हैं, कौन नहीं चाहता? कौन व्यक्ति है जो कि निराकुलता नहीं चाहता? कौन व्यक्ति है जो निर्मलता नहीं चाहता? यही धर्म है, क्योंकि ये उसका स्वभाव है और ये किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य भगवंतों ने इस बात का हमें एहसास कराया है कि ये चीज किसी और से मांगनी पड़े ऐसा नहीं है। क्या कहते हैं धर्म भावना के भाते समय, जांचें सुरतरु देय सुख, चिंतत चिंता रैन, विन जांचें विन चिंत ये धर्म सकल सुख दे। याचना करने से, जांचें का अर्थ है याचना, याचना करने से या मांगने से कल्प वृक्ष भी हमें कुछ दे देते हैं, मनचाही चीज, और मन में विचार करने से हमारी मनोकामना चिंतामणि रत्न भी पूरा कर देता है। लेकिन जहाँ मांगने की, याचना करने की, प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं है, जिससे हमें सब प्रकार का सुख, शांति और निराकुलता मिल जाती है, हम अपने उस निर्मल स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं, जिससे फिर हमें बाद में च्युत भी नहीं होना पड़ता है, नीचे भी नहीं आना पड़ता। एक ऐसे उत्थान की अवस्था जहाँ से हमारा पतन नहीं होता है। बिना प्रार्थना, बिना मांगे, वो सिर्फ एक धर्म ही है जो हमें सब कुछ जीवन में देता है। रहीम ने लिखा है शायद, रहीमन बे नर मर गए जो नर मांगन जाए, उनसे पहले बे मरे जिन मुख निकसत नाए। रहीमन ने लिखा हुआ है कि मांगना तो, दीनता तो मरण के समान है। चाहे कल्पवृक्ष से मांगना पड़े और चाहे चिंतामणि रत्न से मांगना पड़े, मांगना तो मरण के जैसा ही है। और वे नर उससे मांगने से पहले ही मर गए जो कि अपने पास होते हुए भी दूसरे को देने से मना कर देते हैं। ऐसा लिखा उन्हें, मांगने वाला तो मर ही गया, पर जो मांगने वाले को देता नहीं है वो तो उससे पहले भी मर गया, ऐसा लिख रहे हैं। दोनों ही चीजें हैं, याचना और मांगना, भिकारीपना, ये हमारा आदत में शुमार हो गया है। पांचों इंद्रियों के भोग की सामग्री की याचना, चाहे सच्चे देवगुरु शास्त्र भी क्यों ना हो, उनके सामने भी हम करने से नहीं चूकते हैं। इतनी आदत में हमारे ये मांगने का और याचना करने का और भिखारीपना, एक ग्राहक के सामने भी ऐसे हम याचना करते हैं दो दो पैसे के लिए, नहीं साहब ये पड़ता नहीं साहब, ये तो इतने ही में मिलेगा साहब, हमको घर में ही नहीं पड़ा साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप। कैसे मुश्किल, कैसे उस समय हम कितने ही बातें वो खरी खोटी सुना देवे, कितने ही भी कपड़े पटक वाले वे, सौ थान पटक वाले वे, मुख से ची नहीं करते, उफ नहीं बोलते। क्या है भीतर, दो पैसे के पीछे सब, अपना स्वाभिमान भी खो देंगे, अपना ईमान भी खो देंगे। कभी इस तरफ हमारा ध्यान जाता है कि नहीं, उठक बैठक कर लेंगे दो पैसे के लिए, अगर दो पैसे बच रहे होंगे। सब कुछ करने तैयार हैं हम, अपना पतन भी करने तैयार हैं। ये चीज हमें विचार करनी चाहिए कि क्या इस तरह हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर पाएंगे, अपने जीवन को ऊंचा उठा पाएंगे, जहां कि हमारे भीतर अपने पांच इंद्री और मन के विषयों की पूर्ति के लिए, अपना ईमान भी खोने के लिए हम तैयार हों, वहां जीवन में धर्म आ ही नहीं सकता। धर्म की क्रियाएं दोहरा लेना बिल्कुल जुदी बात है और जीवन में धर्म आना बिल्कुल जुदी बात है। धर्म की क्रियाएं दोहराने वाला धर्मात्मा नहीं होता, जो वास्तव में धर्म को अपने जीवन में धारण करता है वो धर्मात्मा होता है। वाणी और शरीर से हम बहुत धर्म करते हैं, लेकिन धर्म तो मन में ही शोभा देता है, और जिसके मन में धर्म आ जाता है वो अपने मारने वाले को भी बचाने का प्रयत्न करता है, ऐसा गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन में लिखा। और हम अपने जीवन में टटोल कर देखें कि क्या हमारी वाणी और शरीर में जितना धर्म आया है उतना ही हमारे मन में आया है या नहीं आया, और धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, धर्म की महिमा क्या है, धर्म की भावना, धर्म की उपासना, धर्म की आराधना और धर्म की साधना क्या मेरे जीवन में शुरू हुई है नहीं। अभी तो मुझे इस वास्तविक स्वरूप को भी धर्म के समझना जरूरी है, उसकी भावना, फिर उस धर्म की उपासना और आराधना, और फिर उस धर्म की साधना। वास्तव में यह हमारे लिए अनिवार्य है अपने जीवन को अच्छा बनाने के। धर्म भावना हम लोग इतना ही कह करके रह जाते हैं कि जांचें सुरतरु दे सुख चिंतत चिंता रैन, बिन जांचें बिन चिंतिये धर्म सकल सुख देन। भैया धर्म बहुत अच्छी चीज़ है, बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, और जो दिना मिल वो बंद हो जाए तो का काम को धर्म, क्योंकि लिखा हुआ था उसमें कि मांगने की भी जरूरत नहीं, अपने आप मिल जाएगा। स्वयं भगवान के सामने गए और यही हमने कह दिया कि वो तो हमें मालूम है कि बिना मांगे मिल जाएगा, मतलब मिल जाना चाहिए, हम यहां से पूजा करके लौटे और लाख रुपये टपक जावे तो सार्थक है पूजा न का पूजा ना। ऐसी भावना तो हमने कई बार भाई है भैया, धर्म की, धर्म से हमने संसार के सुखों की भावना भाई है, हमने धर्म की भावना नहीं भाई। अगर धर्म की भावना भाई होती तो चित्त में निर्मलता आए बिना नहीं रहती, चित्त में निराकुलता आए बिना नहीं रहती। वास्तव में तो धर्म वही है जो हमारे चित्त को निर्मल कर दे, जो हमारे मन को निराकुल कर दे। आचार्य भगवंतों ने जो चार बातें धर्म के बारे में लिखी, जो उसका वास्तविक स्वरूप लिखा, उसे हम पहले समझें, फिर धर्म की भावना कैसे भानी चाहिए, और फिर धर्म की आराधना, धर्म की उपासना, और अंत में धर्म की साधना कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम समझ लें। धर्म शब्द अपने आप में बहुत अधिक कहना चाहिए कहना अपना अर्थ खो चुका है। धर्म कहने मात्र से अब हमें ये लगता है कि सोलह का भोजन कर लिया, शुद्ध भोजन कर लिया, थोड़े मंदिर में जाके पूजा कर ली, अभिषेक कर लिया और हो गया धर्म। अब धर्म के मायने सिर्फ इतने ही हैं कि मंदिर, और मंदिर में सारा कुछ दोहराया और बाहर निकले फिर ज्यों का त्यों। अगर किसी से कहो कि भैया बहुत धर्मात्मा हो गए हैं, किसी से कहो तो वो समझ जाता है कि धर्मात्मा हो गए मतलब अब घर गृहस्थी में माने रुचि नहीं रह गई, खूब कर लो, सेचुरेशन हो गया, अब थोड़ा फुर्सत है तो मंदिर में जाने लगे होंगे, महाराज के पास वचन का सुनने लगे होंगे, बाकी हैं ज्यों के त्यों। पहले जैसे गाली देते थे आज भी वैसे ही देते हैं, पहले जितना गुस्सा करते थे आज भी उतना ही करते हैं, जितनी पहले मान सम्मान की भूख भीतर थी आज भी ज्यों की त्यों, कोई परिवर्तन नहीं आया। बस सिर्फ इतना हुआ है कि भैया ये धर्मात्मा हो गए, मंदिर जाने लगे, पूजा करने लगे, पहले तो जाते ही नहीं थे, अब तो जाने लगे, अब तो प्रवचन में भी बैठने लगे, पर हैं ज्यों के त्यों। ये जो है, हमने इस तरह से धर्म का अर्थ समझ लिया है, हमें धर्म का वास्तविक स्वरूप समझना आवश्यक। धर्म की क्रियाएं दोहराने का नाम धर्म नहीं है। धर्म की क्रियाओं को दोहराना तो ठीक ऐसे है जैसे कि आपने शरीर पर कपड़े पहन लिए। शरीर पर कपड़े पहनने से कोई सुंदर नहीं होता, जिसका हृदय निर्मल है वो सुंदर है, वही धर्म से युक्त है। ये हृदय की निर्मलता हमारे भीतर आई, हृदय की उदारता और विशालता आई है या नहीं आई है, ये हमें निरंतर विचार करना। अपन इस तरह से कह करके किसी पर कमेंट नहीं कर रहे हैं, ना अपने आप पर कोई कमेंट कर रहे हैं, ऐसा मत सोचना। भाषा का जरूर अपन ने ऐसा उपयोग कर लिया ताकि अपने कोई चोट पहुंचे, दूसरे को चोट पहुंचाने का कोई विचार नहीं है इसमें। अपन विचार कर रहे हैं सिर्फ कि मैंने ऐसा कर लिया, मैंने धर्म के मायने ये समझ लिया। जब कोई कहता है मेरे से कि मुझे धर्म करना चाहिए, तो मैं सोचता हूँ कि मुझे शुद्ध भोजन करना चाहिए, मुझे रात में भोजन नहीं करना चाहिए, और मुझे मंदिर जाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। मैंने धर्म करने के मायने ये ले लिया है, लेकिन इतना ही नहीं है, ये सब तो है ही धर्म करने के मायने, लेकिन इससे भी और आगे जाना चाहिए था मुझे। इतने में ही धर्म नहीं है। धर्म का वास्तविक स्वरूप तो अपने आत्मा में स्थित होना, अपने आत्म स्वरूप को पाना, बत्तु स्वभावो धम्मो। वास्तव में धर्म तो हमारा अपना जो स्वभाव है उसकी प्राप्ति करना है, लेकिन उस स्वभाव की प्राप्ति कैसे होगी, तो क्षमादि भावो यदस बिहो धम्मो, उत्तम क्षमा आदि भाव मेरे भीतर आना चाहिए, मेरे भीतर क्रोध हटना चाहिए। जैसे ही क्रोध हटेगा मेरा अपना स्वभाव प्रकट हो जाएगा, क्षमा मेरा स्वभाव है। क्षमा भाव लाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना मुझे, मुझे प्रयत्न सिर्फ करना है। क्षमा भाव की तो सिर्फ उपासना और आराधना करनी है, और साधना क्षमा धारण करने की नहीं करनी, क्रोध ना करूं इस बात की साधना करनी है। देखना आप, भावना भानी है मुझे अपने स्वभाव को प्राप्त करने की, आराधना और उपासना करनी है मुझे अपने स्वभाव की, जैसे कि क्षमा है, मृदुता है, सरलता है, पवित्रता है, सच्चाई है, संयम है, त्याग है, तपस्या है, इन सब चीजों की मुझे आराधना और उपासना करनी है। लेकिन साधना क्या करनी है, साधना मुझे क्रोध ना आए इस बात की साधना करनी है, मेरे अंदर मान आने लगे तो मुझे मान को हटाने की साधना करनी है, मुझे मृदुता लाने की साधना नहीं करनी। मृदुता तो मेरा अपना नेचर है,
मैं अपने नेचर के विपरीत चला गया हूँ, मुझे वापस लौटना है, मुझे साधना सिर्फ इतनी करनी। जब बुद्ध से ये पूछा गया कि आपने इतनी तपस्या के बाद क्या प्राप्त किया, बोले पाने को कुछ था ही नहीं। अरे तो फिर आप ये साधना काय को करते रहे? बोले जो मुझे पाना था वो मेरे पास पहले से ही था। तो आपने पाने के लिए कोई साधना नहीं की? नहीं, पाने के लिए कोई साधना नहीं की। तो साधना करने का मतलब क्या हुआ? बोले खोने के लिए। मैंने क्रोध खोया, मान खोया, माया खोई, मैंने लोभ खोया, मैंने सारी साधना इन कषायों को विसर्जित करने की है। मुझे कुछ पाना नहीं था, जो मुझे पाना है वो तो मेरे पास ऑटोमेटिकली पहले से है, मैं भूल गया हूँ, वो मेरा इन सब विकृतियों में ढक गया है मेरा स्वभाव। ये कोशिश होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम क्षमा भाव धारण करने की भी कोशिश करने लगते हैं, हम विनय धारण करने की, अगर कोई विनय धारण करने की कोशिश करने लगे तो फिर वो चमचाई हो जाएगी, फिर वो बटरिंग कहलाएगी। हाँ नहीं, बहुत बहुत स्पष्ट है, कोई बाहर बाहर से विनय कैसे की जाती, सिखा दो हमें कैसे विनय की जाती, जब महाराज जी आए तो ऐसे कर लेना, हाँ ऐसे कर लेंगे, फिर जब वो बिल्कुल पास आ जाए तो बिल्कुल लौट ही जाना, हाँ लौट जाएंगे, तो आ जाएगी क्या विनय, आ जाएगी क्या? ऐसे आती होती तो बहुत आसान था, फिर तो हम एक तो वर्कशॉप डेवलप कर लेते और उसमें सिखाते कि अब जैसे ही कोई भगवान दिखे तो फौरन ऐसे कर लेना, आ गई विनय। ऐसे नहीं आती, मेरे भीतर का अहंकार जितना जितना हटेगा उतनी उतनी मेरे भीतर है वो पहले से। सबके भीतर सोता है एक झरना, इस इंतजार में कि कोई आए और ऊपर की परतें हटाए और एक धार नई बहाए। सबके भीतर सोता है एक झरना शीतल जल का, ठीक ऐसे ही जैसे कि हमारे जिस पे बैठे हैं उसके नीचे भी होगा एक शीतल जल का झरना, लेकिन उस पे जमी हुई है परतें मोटी मोटी, वो हम हटाएंगे तो वो तो अपने आप प्रकट हो जाएगा, कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं। मेरे ऊपर जो क्रोध की परत जमी हुई है वो मेरे क्षमा भाव को प्रकट नहीं होने देती, मेरा अहंकार मेरी मृदुता को नष्ट किए बैठा है, मेरी अपनी मायाचारी मेरी अपनी सरलता को नष्ट कर देती है, मेरी अपनी लोभ की प्रगति मेरी पवित्रता को नष्ट करती है। मैं पवित्र हूँ लेकिन मेरा लोभ मुझे कलुष कर देता है, जितना जितना लोभ है उतनी अधिक मलिनता है जीवन में। पवित्रता जितना संतोष है उतनी पवित्रता है, जितना लोभ से रहित अवस्था है उतनी पवित्रता, कहीं से लाना नहीं है। मेरा कहने का आशय सिर्फ ये है कि इस धर्म की साधना करने के मायने हैं कि मैं अपने भीतर की विकृतियों को रोज रोज हटाऊं, यही साधना है धर्म की, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम देखें इस प्रक्रिया को हम किस तरह से करें, बहुत आसान से तरीके से हमें इसको करना चाहिए। हमारे जीवन में जब जब भी क्रोध का अवसर आए तब तो हम क्रोध कर ही लेंगे, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। क्रोध का अवसर आया और हम क्रोध ना करें ये तो होगा ही, लेकिन इसके बाद तो कुछ है हमारे हाथ में, ये हमारे हाथ में नहीं है कि क्रोध का अवसर आने पर हम अपने को रोक सकें, क्योंकि इतनी साधना नहीं हमारी। तो हम क्या करें, उस क्रोध का ड्यूरेशन कम कर दें, बच्चों जैसा गुस्सा कर लें? कैसा नहीं कर सकते कि 5 मिनट अच्छी तेजी से लड़ लिया उसके बाद गले में हाथ डाल लें? कैसा नहीं कर सकते, उसका ड्यूरेशन कम नहीं कर सकते? कितनी देर तक गुस्सा करना है? थोड़ी देर, बस कर लिया हो गया, उसके बाद माफी नहीं मांग सकते? उसके बाद सॉरो फील नहीं कर सकते? कन्फेस नहीं कर सकते क्या? क्या हम उसको ज्यादा प्रोलॉन्ग करें, ज्यादा देर तक बढ़ाएं, कल तक बैर के रूप में बांध ले? ऐसा आवश्यक नहीं है। हम इस तरह से अगर हमें क्रोध हावी जाता है तो उसके ड्यूरेशन को कम कर दें, उसे हम नेगेटिव से पॉजिटिव बना दें। क्रोध में किसी का अहित नहीं करूंगा, क्रोध आने पर मेरे से किसी का अहित ना हो। क्रोध आने पर भी हित हो सकता है क्या? हो सकता है। बेटे पर माँ रोज गुस्सा करती है, काहे के लिए? तू बिगड़ रहा है, अच्छा बन, इसलिए गुस्सा कर रही, ये पॉजिटिव है। कोई व्यक्ति अपने जीवन का अहित कर रहा हो उस पर हमें अगर गुस्सा आती है, या कि हम अपने आप पर गुस्सा करें, अपना जब जब भी अहित करें तो अपने आप पर गुस्सा करें कि मैं अपना अहित क्यों कर रहा हूं। गुस्से को क्या हम इस तरह से पॉजिटिव बना सकते हैं? बना सकते हैं। कितनी देर तक करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, कैसे करना है, गुस्सा तो करना पर कैसे करना, हाँ उसकी इंटेंसिटी कितनी रखना है, ज्यादा कि कम, ऐसा कभी विचार किया? कर सकते हैं ऐसा विचार, कोई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। थोड़ा सा अगर शांत बैठ करके सुबह शाम इस प्रक्रिया को एक ही चीज को चलो, क्रोध को ही, इसी तरह अहंकार को, इसी तरह लोभ को। लोभ हमारा उतना ही होता जितना हमारा बजट है, लेकिन हम अपने बजट के अनुसार ही लोभ करते हैं, तो इसी तरह हम अपनी लोभ की प्रक्रिया को चेंज भी तो कर सकते हैं। काय को ज्यादा लोभ करना, जितने से मेरा जीवन चलता है उतने ही लोभ करो ना, उससे ज्यादा काय को करो। चार कपड़े पहनने को चाहिए हैं लेकिन 40 का लोभ काय को करो, ऐसा मन में विचार करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाकर के सारे कपड़े फेंक देना घर में से, लोभ कम हो गया। ऐसे होता कम तो बहुत आसान था कि उठा करके दूसरे को दे दिए, ऐसे थोड़ी होता। लेकिन ये विचार मन में आना चाहिए, जब विनोबा 13 महीने जेल में रह करके लौटे, तो मैंने उदाहरण नहीं सुनाया था, 13 महीने के बाद जब जेल से वापस लौटे तो जेल में जितनी चीजें रखी थी वही उनने अपने कमरे में रख रखी। लोगों ने कहा कि क्या कर रहे हैं आप, अब तो जेल से लौट आए हैं, अब तो सारी चीजें बहुत सारी हैं उपयोग की। बोले अब मुझे तो जीवन जीने का ढंग आ गया, जब मेरा काम उतनी कम चीजों में चल सकता था तो यहां आने के बाद भी उतने में चल सकता, अब तो जीवन भर इतना ही रखूंगा। क्या ऐसा विचार हमारे भीतर निर्लोभ का नहीं जागृत हो सकता? गांधी जी जैसे लोगों से जो कि अपने प्रैक्टिकली करते थे, उनसे कोई मैसेज नहीं ले सकते क्या हम? ये इसलिए कह रहा हूं आपको कि जो ग्रंथों में लिखी हुई है बड़ी बड़ी बातें और हमें लगता है कि वे सब हो गई आउट ऑफ डेट, लेकिन धर्म है बिल्कुल अप टू डेट। वो आज भी हमारे जीवन में उतना ही कार्यकारी है। लिखी होंगी वो पुरानी बातें, लग गए होंगे उनके दिन, लेकिन आज भी हमारे जीवन को उतना ही अप टू डेट बना देता है। अप टू डेट होने के मायने ये नहीं है कि हम लोभी हो जाएं, अप टू डेट होने के मायने ये नहीं है कि हम अहंकारी हो जाएं, अप टू डेट होने के मायने हैं कि हम आज भी उतने ही बढ़िया अपने जीवन को जीते हैं जितना कि पहले लोग जिया करते थे, उतने ही पवित्र हैं। ये अप टू डेट होने के मायने हैं, अप टू डेट होने के और कोई मायने नहीं। डायनामिक होना, हमेशा गतिशील होना, अपनी प्रोग्रेस हमेशा करते रहना, धर्म डायनामिक होना सिखाता है, धर्म अप टू डेट होना सिखाता है, इन अर्थों में अप टू डेट होना सिखाता है। ये उदाहरण आज भी हमारे जीवन को प्रेरणा दे सकते हैं कि एक लोटे से रोज मुंह धोते थे, और प्रयाग में जब कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए और नेहरू जी के साथ बात करते करते वो एक लोटा पानी मुंह धोने में खत्म हो गया और मुंह पूरा नहीं धुल पाया, एक लोटा और मंगाना पड़ा, तब बहुत फील किया था उन्होंने कि रोज एक लोटे में पानी से मुंह धो लेता था, आज इतनी लापरवाही कि दूसरा लोटा और चाहिए पड़ा। नेहरू जी हंसने लगे कि सुनो, अपने आश्रम में नहीं बैठे हो, मेरे प्रयाग में बैठे हो, नदियां दो दो मिली हैं, यहाँ संगम है, पानी की कोई कमी नहीं है। तब गांधी जी ने जवाब दिया था कि नदियां सिर्फ हमारे लिए नहीं बहती, सब लोगों के लिए हैं, मुझे जितना आवश्यक है उतना ही लेऊं, उससे अधिक पर अधिकार मेरा नहीं है। क्या ऐसा मन के भीतर अपने विचार नहीं आता? अपने पास इतनी इतनी चीजें हम जोड़ते चले जाते हैं, इतना लोभ हमारा बढ़ता चला जाता, और एक ही चीज है लोभ। लोभ ही हमारे मन को मायाचारी सिखाता है, लोभ ही हमारे मन में अहंकार पैदा करता है, और जब अहंकार की तुष्टि नहीं होती तो वही क्रोध में कन्वर्ट हो जाता। अगर देखा जाए तो एक ही डोर है, और इसीलिए आचार्य भगवंतों ने सबसे पहले अपने मन को पवित्र और निर्मल बनाने के लिए ही कहा है, और निर्मलता आती है निर्लोभ होने से। धर्म निर्लोभ होने में है, धर्म निर्मलता में है। यहां से हम शुरू करें, क्षमादि भावो यदस भी हो धम्मो, और क्षमा आदि भाव ऐसे नहीं आते जब तक कि रैनत्रयम च धम्मो, जब तक कि जीवन में रत्नत्रय नहीं आएगा तब तक क्षमा आदि भाव नहीं आ सकते। वो तो बाहरी बाहरी होंगे, जब दृष्टि निर्मल होगी, आत्मज्ञान होगा और आत्मलीनता आएगी, ऐसा जब रत्नत्रय आएगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तब उसके साथ ही क्षमा आदि भाव आएंगे। और रत्नत्रय धर्म तब तक नहीं आ सकता जब तक जीवानम रखनो धम्मो, जब तक प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव नहीं आएगा तब तक रत्नत्रय भी नहीं आ पा सकता, और जब तक रत्नत्रय नहीं आएगा तब तक क्षमा आदि भाव नहीं आ सकते, और जब तक क्षमा आदि भाव नहीं आएंगे तब तक हम अपने वस्तु स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकते। आचार्य भगवंतों ने कितनी बढ़िया ढंग से और हमें अपने जीवन में उस धर्म को पाने का उपाय बता दिया, हमें साधना का जरिया बता दिया है कि पहले अपने जीवन में दया लाओ, अपनी दृष्टि निर्मल करो, अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपने आचरण को निर्मल करो, क्षमा आदि भावों को धीरे धीरे अपने भीतर प्रकट करो, देखोगे कि तुम्हारा स्वभाव तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। उस निर्मलता को प्राप्त। सारे अनुष्ठान हम जो भी करें, चाहे हम प्रवचन सुने, चाहे हम स्वाध्याय करें, चाहे हम पूजा करें, चाहे हम भोजन की थाली पर और बाद भक्ष्य पदार्थ ही खाएं, रात्रि में ना खाएं, इन सब का एक ही उद्देश्य हो, इन सब का एक ही उद्देश्य है मेरे अपने जीवन की निर्मलता, मुझे अपने जीवन को निर्मल बनाना है। अगर इस तरह का हमारे मन में भाव आ जावे, इसी का नाम तो धर्म भावना है, और कोई विशेष चीज़ नहीं है भैया। धर्म वही है जो कि हमारे मन को निर्मल करे, हमारे जीवन को ऊंचा उठाए और हमारे आचरण में आए। आचरण में आया हुआ धर्म ही श्रेष्ठ है, वाणी और शरीर में आया हुआ धर्म उतना ज़्यादा लाभप्रद नहीं है। वो तो हमने हासिल कर लिया वाणी में और शरीर में, अब हासिल करना है सिर्फ ये कि मन में भी आए, तो सुबह शाम हम बैठ करके ऐसे धर्म को अपने मन में लाने का भी धीरे धीरे पुरुषार्थ करें। जब जब भी क्रोध आने लगे, तब तब हम अपने भीतर झांकें कि मुझे अपने स्वभाव से विचलित नहीं होना है, अपने आचरण को निर्मल, जब भी मलिनताएं मुझे घेरें मैं अपनी निर्मलता को ना भूलूं, जब जब अहंकार मुझे घेरे मैं अपनी मृदुता को ना भूलूं, जब जब मायाचारी मुझे घेरे मैं अपनी सरलता को ना भूलूं, जब तब लोभ मुझे घेरे मैं अपनी पवित्रता को ना भूलूं, ये चीज़ मेरे ध्यान में बनी रहे। क्योंकि अवसर इन सब के आएंगे, लेकिन उसके बीच में मुझे कैसे अपने जीवन को और आगे बढ़ाना है, ऊंचा उठाना है, ये बना रहे भाव। मैंने वो उदाहरण सुना तो दिया है, मुझे याद है कि मैंने सुनाया है, पर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कैसा है वो उदाहरण? सिपाही बीमार रस्ते में पड़ा है, एक साधु बाबा जी वहाँ से गुजरते हैं, वो उनको आवाज़ देता है, बाबा जी पहुँच जाते हैं। उसे दुखी देखकर सोचते हैं कि इसे दो बातें धर्म की सुनाऊं, शायद इसको शांति मिलेगी धर्म की बातें सुनने से। पूछते हैं उससे कि भाई तू बहुत दुखी है, कष्ट में है, तुझे क्या कोई धर्म की बात सुनाऊं जिससे तेरा कष्ट कम हो? वो कहता, मुझे नहीं सुननी धर्म की बातें, मुझे तो प्यास लगी है, पानी पिला सकते हो, उसी से मुझे शांति मिलेगी। बात तो ठीक है, पहले मुझे पानी पिलाओ। और बाबा जी ने जो भी उपाय हो सकता था पानी उनको पिलाने का वो किया, पानी पिला दिया। और पानी पीने के बाद कहा कि और कुछ? मेरे से करवट नहीं ली जाती, बहुत कष्ट है, मुझे करवट दिला दो। बाबा जी ने मदद करके करवट दिला दी। करवट दिलाने के बाद बाबा जी एक कंबल ओढ़े थे, वैसे वाले बाबा जी थे, कंबल ओढ़े थे वो, तो हमारे जैसे बाबा जी, कोई काम के नहीं, कुछ नहीं दे सकते, क्या काम के कंबल कुछ भी नहीं है, क्या देंगे? दो शब्द दे सकते हैं और क्या देंगे, भावनाएं उत्पन्न करवा सकते हैं। वो वाले बाबा जी के पास कंबल था, तो उन बाबा जी ने कहा कि और क्या कहूँ, और क्या करूँ तुम्हारे लिए? उसने कहा, ठंड बहुत लगती बाबा जी, कोई इंतज़ाम कर दो। बाबा जी ने अपना कंबल उसके ऊपर ढांक दिया। जैसे ही कंबल ढांका, उस सिपाही की आंख में आंसू आ गए। बाबा जी आप मुझे धर्म की बातें जरूर सुनाओ, अभी थोड़ी देर पहले कहता था कि धर्म की बात सुन के करूँगा क्या, अब कहता है कि मुझे धर्म की बात जरूर सुनाओ। बाबा जी ने पूछ लिया कि पहले क्यों नहीं सुनना चाहते थे, अब क्यों सुनना चाहते हो? तो उसने एक ही बात कही कि जिसके जीवन में धर्म आ गया है उससे धर्म की बात सुनना चाहता हूँ। आपने मुझे पानी पिलाया, करवट दिलाई और यहाँ तक कि अपना कंबल भी दे दिया, मुझे मालूम पड़ गया कि अगर धर्म आपको ये करना सिखाता है तो धर्म अवश्य श्रेष्ठ है, आप मुझे धर्म जरूर सुनाओ। भैया धर्म की श्रेष्ठता अपने जीवन में उसको प्रकट करने पर ही होगी, तब मालूम पड़ेगा स्वयं को भी और दूसरे को भी। अकेले वाणी से धर्म सुनना सुनाना ही श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए उसका उपयोग करें तो दूसरे को भी और स्वयं को भी उस धर्म को धारण करने का मन बनेगा। हम लोग अपने जीवन में धर्म की भावना भाएँ, उसकी उपासना और आराधना करें, और इतना ही नहीं अपने जीवन को धर्ममय बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी साधना भी शुरू करें। आज इस तरह हमने इस प्रक्रिया को, जिसमें कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया मान रहे थे, वो हमने पूरी की। अब देखते हैं आगे हम और कैसे अपने जीवन को किसी और उपाय से और अच्छा बनाने के लिए अपने जीवन को क्या उपाय करते हैं।
हम और अपने जीवन को अच्छा बनाने का उपाय कर सकें। हमें